அதிவ்யாச்சித்திர்வச்சான் கேச்சித் பரசுபாணயஹ ராதகம் சரணான்யேகே பிரஜானாம் ஜலிதோ முகை கேச்சித் கனித்ரே விவிதோ சேது பிராகார கோபுரான் ஆதிவ்யாச்சித்திர்வச்சான் கேச்சித் பரசுபாணய ராதகம் சரணான்யேகே பிரஜானாம் ஜலிதோல்முகே கேச்சித் கனித்ரே விபுதுஹு சேது பிராகார சேது பிராகார கோபுரான் ஆதி ஆசித்து துர்வச்சான் கேச்சித் பரசு கேச்சித் குச்ச அசுர் கனித்ராய் பாவடோ சே விபுது கண்டு கண்டு கர்தியா சேது பூல் பிராகார் ரச்சா கண்ணே வாலி திவாலே பர்கோட்டே கோபுரான் நகர் கே துவாரம் கோ ஆதிவியான் ஜீவ் கா சாதன் சிச்சுது காட் டாலா விருக்ஷான் விருட்சம் கோ கேச்சித் குச்சோ நே பர்ஷபாணயா ஹாத் மே குலாடி லேகர் பிராதஹன் ஜலா டாலா சரணானி ஆவாஸ் ஏகே அன்ய அசுரோ நே பிரஜானாம் நாகரிகோ கே ஜலித் ஜலத்தி ஹுயே உல்மகாய லுகாட்டே சே அனுவாத் ததா தாத்பர்ய ஸ்ல பிரபாத் த்வாரா ஸ்ல பிரபாத் கீ ஜாய் குச் அஸ்ரோ நே ஃபாவடே லேகர் புல் பர்கோட்டே ததா நகரோ கே த்வாரோ கோபுரோ கோ தோட் டாலா குச் நே குலாட் லேகர் ஆம் கடல் கே மஹத்வபூர்ண விருட்சோ ததா அன்ய போஜ்ய சாமக்ரி வாலே விருட்சோ கோ காட் டாலா குச் அஸ்ரோ நே ஹாத் மே ஜலத்தே லுகாட்டே லேகர் நாகரிகோ கே ரிஹாயிஷி மகானோ மே ஆக லகா தி தாத்பர்ய சாமான்யதயா விருட்சோ கோ காட்னா வர்ஜித ஹை விசேஷதயா ஜோ விருட்ச மானவ சமாஜ கே பரண் கே லியே ஸ்வாதிஷ்ட ஃபல் உத்பன்ன கர்தே ஹை உன்னே தோ நஹி காட்னா சாஹியே விபின்ன தேஷோ மே பின்ன பிரகார் கே ஃபல் விருட்ச ஹோதே ஹை भारत में आम तथा कटहल प्रमुख है और अन्य स्थानों में आम कटहल नारियल तथा बेर के वृक्ष पाए जाते हैं। ऐसा कोई वृक्ष जो मनुष्य के भरण के लिए स्वादिष्ट फल उत्पन्न करता हो उसे बिल्कुल ही नहीं काटना चाहिए, ये शास्त्रों का आदेश है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया சச்சன்மீலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரு மூகம் கரோதி வாசாலம் பங்கம் லங்கயதே கிரிம் யத் க்ருபாதமஹம் வந்தே ஸ்ரீ குரும் தீனதாரணம் பரமானந்த மாதவம் ஸ்ரீ சைதன்யமீஸ்வரம் ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபிஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மையம் ததாதி ஸ்வாபதாந்திகம் வந்தேஹம் ஸ்ரீகுரோ ஸ்ரீயுதபதகமலம் ஸ்ரீகுருன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சேகனா ரகுநாதானிதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜனசஹிதம் கிருஷ்ண சைதன்யதேவம் श्री राधा कृष्ण पादां सहगना ललिता श्री विशाखान्तं च नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतानि पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्ति रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि ध्येयं सदा परिभवग्नाभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिव विरञ्चिनुतां शरण्यं हृत्यार्थं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे समस्त भक्तगणों का हरे कृष्णा। ये प्रसंग चल रहा, कुछ पहले से सुन रहे हैं कुछ नए हैं। हिरण्यकश्यपु प्रथम अध्याय में चर्चा हुआ था, भगवान जब सृष्टि का बनने के बाद स्वयं मनोर को सृष्टि किया, उनको प्रजा को उत्पन्न करने के लिए जब ब्रह्मा जी उसका आदेश दिया, प्रजापति पूछते हैं स्वयं भवन, पूछते हैं भवन मेरे रहने का आयोग्य को स्थान कौन सा, किस स्थान में मैं रहना चाहिए। ब्रह्मा जी सोचते हैं कि तो तुम तो भूलोक में रहना चाहिए, मृत्युलोक में, मृत्युलोक तो रसातल में गया हुआ है। हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष उसको पूरा भूमंडल को लेकर रसातल में, जो गर्भोदयशायी का वहां गर्भोदय समुद्र है उसके पाताल में रख दिया, उसको कैसे लाएं, एक भूमंडल एक छोटा सा फीस नहीं है। ब्रह्मा जी विचार कर रहे थे किस प्रकार इसको भूमंडल को अपना स्थान पर स्थापना करना चाहिए, कौन करेगा, ये मेरे में इतनी शक्ति नहीं है। ब्रह्मा जी को सृजन करने की शक्ति है, लेकिन हर एक प्लानिटरी सिस्टम को लोगों को अपना अपना स्थान में रखने व्यवस्थित करने का शक्ति ब्रह्मा में नहीं है, इस कैसा कारण विचार कर रहे थे। उसमें उसी समय उनका का नासिका से एक छोटा सा वराह का शुकर का ऐसा छोटा जीव था बाहर आया, सभी देखते देखते वो ऐसा भयानक इतना रूप धारण कर लिया, बढ़ते 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 गया जैसे बढ़ रहे थे। ब्रह्मा जी का लोक में हमेशा उनका साथ सिद्ध महापुरुष रहते हैं उनको स्तुति करने के लिए। सिद्ध अगर समस्त ऋषिगण देखा है कि तो एक साधारण जीव ने साक्षात भगवान श्री नारायण ही है, वही ऐसा विकराल रूप धारण कर सकते, देखते देखते ऐसा विकराल रूप धारण किया आकाश का तल हो गया, सभी पुरुष सूक्तम से मंत्रों से उसको स्तुति करने लगा। तुरंत भगवान जो वहां से किसी से पूछा नहीं, तुरंत समुद्र में छलांग मार के भूमंडल के जैसे ऊपर लेकर आ रहे थे। हिरण्याक्ष देखकर उसको ललकारते हैं, बहुत अच्छा कथा है उसमें। ललकारने के बाद दोनों के बीच में घोर युद्ध होता है और हिरण्याक्ष को एक वरदान था, किसी अस्त्र से शस्त्र से नहीं मारा जाता। कई का प्रश्न होता है कि भगवान तो वराह शुकर रूप सबसे गंदा जीव है, उसका रूप क्यों धारण किया है? तो विशेष है कि इस विश्व में कोई भी जीव कोई काम का बगैर काम का नहीं है, कोई भी निम्न जाति का नहीं, हर एक अपना अपना विशेषता है। भगवान जानना चाहते कि ये भी निम्न जाति का नहीं, क्योंकि मैं भी इसमें अवतार लेता हूं। दूसरा है कि भूमि का तत्व क्या है, भूमि का तत्व क्या है, गंध, पंचभूतों में भूमि का तत्व गंध है। आकाश का तत्व क्या है, शब्द, वायु का तत्व स्पर्श, हरे अग्नि का तत्व क्या है, रूप, और जल का तत्व, हरेक तत्व का पंचभूत हरेक तत्व के अरे के पंचभूत एक तत्व होता है, तन्मात्राएं है। तो गंध के लिए आप किससे, हमारे शरीर में कौन सा अवयव से गंध का स्वादन करोगे? हमारे शरीर में कौन सा ऐसा अंग है जिस अंग से हम गंध का स्वादन करेंगे? नाक से। भूमि गंध के लिए नाक का घ्राण चाहिए थे ना, इसलिए सूकर के सबसे घ्राण शक्ति सबसे बड़ा उत्तम है। जितने भी जीव है वो समस्त जीवन से सूकर का घ्राण शक्ति उत्तम है। और रसातल में, धरातल में पड़ा हुआ है, पाताल में पड़ा हुआ है, भूमंडल को उधारना है उसको अपना घ्राण शक्ति से पहचानना, सर्च करके लेकर आना। उसको लेकर आ रहा था हिरण्याक्ष से युद्ध हुआ, युद्ध में उसके हिरण्याक्ष को भगवान वराह देव ने अपने ही सिंह से मार दिया। जो दांत रहता है ना सूकर को, लंबा था, जंगली सूकर को रहता, इधर नहीं मिलेगा, भारत में नहीं मिलेगा, जब जंगल में जाएगा तो जंगल सूकर बड़ा खतरनाक होता है, वो पेड़ पे बड़ा बड़ा पेड़ को भी ऐसे उखाड़ देता है। उसको मार दिया। जब ये मारा, ये समाचार हिरण्यकश्यप को मिला था, हिरण्यकश्यप बड़ा क्रोध आ जाता है, इतना वो विष्णु छल करके मेरा भाई को मारा है। विष्णु जो है समस्त, चाहे राक्षस असुर हो देवता हो, सभी के लिए समस्त बुद्धि समान, समोहम सर्वभूतेषु, भगवान स्वयं बोलते हैं ना, मैं समस्त जीवों के लिए समान रूप से हूँ, लेकिन हमें इस समय जो भेदभाव किया है, हे विष्णु धोखाबाजी है, मैं इसको मारूंगा। उसके लिए विष्णु के लिए मारना है तो क्या करना, सबसे पहले विष्णु के लिए शक्ति क्या है, समस्त देवता और शक्तिमान, और देवताओं को मारेंगे पहले। देवताओं के लिए बल कौन देता है? यज्ञों से। जब हम जितना धर्म का आचरण करते हैं, जितना यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, यज्ञों को जो आहुति डालते हैं उसी से देवताओं को शक्ति मिलता है। यज्ञ समाप्त हो गया, धर्म का अनुसरण नहीं, देवता समस्त देवता बलहीन हो रहा, कलयुग में सभी देवता बलहीन हो जाते हैं। इसलिए हिरण्यकश्यप ने समस्त सैनिकों का आदेश दिया, जाओ जहां भी कोई भी धर्म का आचरण करें, यज्ञ करें, सबको नष्ट करो, उसको मारो, जान से वध करो उनको, पूरे गांव को जला दो, कोई भी देवता त्राय बोल के घूमते रहने के उसको कोई शरण देने वाला नहीं होना चाहिए। प्रकार बोलने से आज के यही बोल रहे हैं कि कुछ असुरों ने, यहां शब्द असुर बोला है तो राक्षस नहीं बोला, हम तो इंग्लिश में एक ही शब्द है डेमोन बोलते हैं, हमारा वैदिक साहित्य में अलग अलग शब्द है। जो राक्षस स्वभाव का चार प्रकार का होते हैं, एक असुर है, सुर का अर्थ है देवता, देवता कौन है, जो भगवान का प्रभुता को स्वीकार करते हैं, जो भी भगवान का प्रभुता स्वीकार करेंगे, भगवान श्री कृष्ण सर्वोच्च है, परम पुरुष है, हम तो कुछ नहीं है, वो सभी सुर देवता है। जो भगवान का प्रभुता स्वीकार नहीं करते वो असुर, चाहे कोई भी हो, ये जरूरी नहीं कि कोई जाति हो, अगर मैं भी भगवान को स्वीकार नहीं करता हूं मैं तो असुर हो गया। रावण शुद्ध ब्राह्मण का परिवार में जन्म लिया था, उनका पिता सिर्फ ब्राह्मणी था, साधारण नहीं थी, लेकिन भगवान उनको भगवान को मानता नहीं था, क्योंकि मैं ही हूं, एको हम द्वितीय नास्ति, इतना, इसलिए उसको असुर कहा जाए। रावण को राक्षस नहीं बोलेंगे, राक्षस स्वभाव है बोलेंगे, लेकिन राक्षस नहीं बोलेंगे, असुर बोला जाता है। दूसरा है दैत्य। कश्यप महर्षि के जितने भी इस सृष्टि में है, 95-98% तक जितने भी सृष्टि है, चाहे पक्षी हो, मनुष्य हो, देवता हो, कृमिकीट का जितने भी है सृष्टि का आज स्रोत है कश्यप महर्षि। कश्यप महर्षि का कई पत्नी थे, दश प्रजापति ने अपना पुत्रियों को दिया था, सबसे बड़ी पुत्री का नाम था अदिति, जिससे देवता का उत्पन्न हुआ, उसका बहन थी दीति। अक्सर देखा जाता है कहीं स्वभाव है, माताएं बुरा नहीं, मन स्वास्त्री स्वभाव है, पुरुष भी रहता ईर्ष्या लेकिन कम होता है, तो अपना बहन से द्वेष कारण जो है उनके जितने भी पुत्र हुआ अपने ही बड़ा भाइयों से द्वेष भाव रखते थे। देवता भी कश्यप महर्षि का पुत्र है, ये दैत्य भी, दानव भी कश्यप महर्षि का पुत्र है, सभी भाई है, फिर भी हमेशा द्वेष भाव रहते, इसलिए बड़ा से ध्यान में रहना चाहिए। जब माता गर्भ में रहते गर्भस्थ होती है उस समय में माता का जिस प्रकार का मानसिक स्थिति चेतना रहता उसी प्रकार का शिशु का जन्म होता है। श्रीला प्रपाद हमारे को आदेश देते हैं, उपदेश करते हैं कि माता जब घर पर नहीं रहती है उस समय में टीवी वगैरह देखना ही नहीं चाहिए। यदि आप चाहते हो आपका बच्चा अच्छा उत्पन्न हो, ठीक हो, केवल भगवान का लीलामय कथाओं को सुनो, अच्छा कीर्तन को सुनो, कृष्णा का किताब जो है रोजाना पढ़ना चाहिए, मन को किसी भी अवस्था में भौतिक विषयों में लगाना नहीं चाहिए, तब जो बच्चा भी हो जाएगा प्रहलाद महाराज जैसा शुद्ध भक्त बन सकता है। माता का जैसा मानसिक चिंतन रहता है इसी बच्चों का मानसिक चिंतन बदलता, परिवर्तन हो जाता। इसलिए दीदी हमेशा द्वेष करती थी, इसलिए उनका पुत्र भी हमेशा दैत्य कहा जाया गया, जबकि ब्राह्मण का पुत्र होते भी भगवान से विरोध में रहते थे। प्रहलाद महाराज शुद्ध भक्त है लेकिन उनको दैत्य कहा जाता है, बोलते हैं ना दैत्य, जब कब जहां वंशज का बात आता है वो दैत्य बोलेंगे जबकि शुद्ध भक्त है। और तीसरा और एक पत्नी था, उसका दानी, उसका नाम, उनका पुत्र जितने होता दानव कहा जाता है, ठीक है। और राक्षस एक अलग प्रकार का है, जब ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे थे अलग अलग प्रकार के जीवों को सृष्टि किया, एक ऐसा जीव को सृष्टि किया, बोलते तुम लोग क्या काम करेगा, मैं रक्षा करेंगे, किसके पास रक्षा कर, पानी का रक्षा करेंगे। राक्षस का लोग जो असुर लोग बोला जाता है पाताल लोक में रहते हैं, वो पानी के नीचे रहते हैं हमेशा, इसलिए उनको रक्षक होते हुए राक्षस बन गया। केवल वही विकराल स्वरूप होते हैं, सब कुछ खाएंगे पिएंगे सभी, ठीक है ना। ये चार प्रकार के होते हैं जो राक्षस प्रवृत्ति कर चारों का चारे। तो यहाँ असुर है इसलिए मैं पता न पड़ा, कई दफा अलग अलग नाम होने से परकोटे तथा नगरों के द्वारों गोपुरों को तोड़ डाला, कुछ ने कुलाड़े लेकर आम कटहल के महत्वपूर्ण वृक्षों तथा अन्य भोज्य सामग्री वाले वृक्षों को काट डाला। जो प्रजा के हित के लिए कोई भी वृक्ष है सभी शास्त्र मना करते हैं, यहां तक के हमारा वैदिक शास्त्र में तो कोई भी वृक्ष काटना मना किया है। बोलेंगे ईंधन सामग्री कैसा होगा, फिर ज्यादा कुकिंग वगैरह कैसे करें, पकाएंगे कैसा। तो शास्त्र का नियम है कि जब कोई वृक्ष टहनी सूख जाता गिर जाता है तब उस लकड़ियों को लेकर ही ईंधन के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा लकड़ी के लिए अच्छा वृक्ष काटना मना है, उसका मना किया हुआ शास्त्र में प्रपात भी। इसी प्रकार फल वृक्षों के लिए, यहां तक के बाइबल में भी जो बाइबल का कभी मिलता है तो देखना, पहला अध्याय को जेनेसिस को कहा जाता है, उसमें वन फर्स्ट चैप्टर है 28 और 29 में उनको निर्देश दिया है आप लोगों के लिए अर्थात मनुष्यों के लिए फल वृक्ष वगैरह दिया है, ताकि लोग मनुष्य समाज जो है सब खाकर आप जीवित रह सकते हैं। तो जंगल में जितने फल वृक्ष होते हैं मनुष्यों के लिए जीवन के लिए है, ये ऐसे जीवन आधार वृक्ष होते हैं उसको काटना मना है। श्री प्रपाद व्याख्या में भी बोलते हैं ये असुर स्वभाव ही है, जो भी भगवान द्वारा निर्देश किया गया समस्त नियमों को उल्लंघन करना ही असुर स्वभाव है। अब उसका विपरीत वैष्णव का स्वभाव क्या रहता है, भक्तों का स्वभाव जो वैष्णव कहते हैं, भगवान द्वारा जितने भी नियम है उसको शत प्रतिशत उसके जीवन में लेकर आते हैं। यहां पर असुरों का स्वभाव रहता है हमेशा प्रजा को कष्ट पहुंचाना, भगवान द्वारा जो भी नियम को इस विश्व को स्थापना के लिए जो भी नियम बनाया उसको तोड़ना उनका प्रथम कर्तव्य है। पहले बलि महाराज भगवान का भक्त था ऐसी बात नहीं है, परंतु उसने क्या किया, एक ही कारण किया कि भगवान द्वारा जो व्यवस्था किया था उस व्यवस्था को तोड़ दिया। व्यवस्था क्या था, ए इंद्र पुरंधर जो है इस मन्वंतर के लिए इंद्र का काम करेगा, इंद्र जो है उस स्थान का नाम है, जो भी उस सीट पर बैठेगा आप भी बैठेगा आपको इंद्र बोलेंगे। जिस प्रकार जो है इस समय भारत का राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी है ना, ऐसा उधर बैठ गया प्रेसिडेंट बोलते, उससे पहले दूसरा था। इसी प्रकार इंद्र का सिंहासन पर जो भी बैठेगा उसको इंद्र कहा जाएगा, लेकिन हर एक के लिए नाम रहेगा। इस समय जो इंद्र है उसका नाम पुरंधर कहा जाता है, ठीक है। अगला जो इंद्र होगा बलि महाराज, वेटिंग लिस्ट में क्यू में खड़ा है सुतरलोक में। इस मन्वंतर अभी सातवां मन्वंतर वैवस्वत मन्वंतर जाकर अगले सावर्ण्य मन्वंतर आएगा, उसमें बलि महाराज इंद्र बनेगा। तो इंद्र वगैरह स्थापना किया, बलि महाराज इंद्र को हटा दिया, वो स्वयं इंद्र बन गया। तो भगवान का व्यवस्था को तिरस्कार करना असुर स्वभाव है, परंतु भक्त है इसलिए भगवान जो है उसको दंड भी दिया, साथ साथ उद्धार भी किया। तो ये असुर स्वभाव, भगवान के व्यवस्था का विपरीत चलना ही असुर स्वभाव है। भगवान और असुर का स्वभाव क्या हो जाता, हमेशा भागवत में 16 अध्याय में बड़ा अच्छा लिखा है, 16 अध्याय में देवताओं के लिए जो गुण है स्वभाव है 3 श्लोक में पूरा किया है। पहला प्रथम द्वितीय और तृतीय श्लोक, 3 श्लोक में देवताओं का 16 गुण बताया, वही गुण भक्तों का भी है। इसलिए भक्त भी देवताओं का समान वंदनीय है, जितना देवताओं में गुण है उससे भी ज्यादा गुण रहता है। देवता में कभी कभी देश भावना आता है, परंतु भक्तों में किसी देश भावना नहीं होना चाहिए। देश होता है लेकिन हम सीख रहे हैं धीरे धीरे, परंतु भक्तों में जो शुद्ध भक्त बनते हैं किसी प्रकार का देश भाव नहीं होना चाहिए। भगवद्गीता में 12वां अध्याय का 7वां श्लोक से भगवान ने भक्तों का कौन सा गुण भगवान का अत्यंत प्रसन्न है बताते हैं, 13 श्लोक में बताते हैं। सूर्य सबसे पहले क्या बोलते हैं, अध्यक्षा सर्वभूताना मैत्रक करणीय वचा, सबसे पहले बोलते हैं भक्तों का सबसे पहले प्रथम गुण है अध्यक्ष, किसी से भी द्वेष नहीं करना चाहिए। सर्वभूताना, ये नहीं कि भाई मनुष्यों से नहीं है, सर्वभूता किसी से, चाहे मच्छर है, सर्प है, पशु है, गधा है, किसी भी हो, मनुष्य हो, देवता हो, किसी से भी भक्त का प्रथम गुण है द्वेष नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भगवान का गुण है। भगवान जिस प्रकार समस्त बुद्धि से समस्त प्राणियों को देखते हैं, इस प्रकार भक्त भी समस्त समस्त जीवों को समस्त करुणा से देखता है, क्योंकि भगवान भक्त जो है जैसे जैसे सब शुद्ध भक्त स्थान में जाते हैं, भक्त हर एक जीव का बाह्य शरीर को नहीं देखते, उसका अंतर स्थित आत्मा परमात्मा को देखेगा। ओ इसने पिछले जन्म में बड़ा क्रूर स्वभाव वाला था, बड़ा लोभी था, इसलिए इसको सर्प योनि मिला, सर्प शरीर मिला है, इसके लिए मैं उद्धार करूंगा। कैसा करेंगे, हम जोर से बोलते हैं ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम इस प्रकार का भगवान नाम का जोर से बोलते हैं, हरनाम चिंतामणि चौथा अध्याय में हरनाम अरदास ठाकुर भगवान चैतन्य महाप्रभु से बोलते हैं, भगवान यदि जब हम भगवान का नाम जोर से बोलेंगे, कुछ ऐसा प्राणी है बोल नहीं सकते लेकिन सुन सकता, समस्त प्राणी सुन सकते हैं बोल नहीं सकता, जब शब्द तरंग उसके कान से हृदय में प्रवेश करेगा उसका हृदय, क्योंकि भगवान का नाम सुना है, इस कारण जो है तुरंत जब ये शरीर छोड़ देगा उसको मनुष्य शरीर मिलेगा, उद्धार है। अन्यथा एक सर्प शरीर से कितना लाखों वर्षों के पश्चात जन्म मृत्यु हजारों दफा होने के पश्चात जो है मनुष्य शरीर मिलना था, परंतु उसने भगवान का नाम सुना, समस्त पाप क्षय हो गया, इसलिए उसको तुरंत ही मनुष्य शरीर मिलेगा ताकि वो भक्ति करेगा। अगर मनुष्य शरीर मिलने के बाद भी भक्ति नहीं करे तो दुर्भाग्य है। ये तो ये तो वैष्णव का गुण है, परंतु वह जो असुर प्रभाव के क्या है, वो भगवद्गीता में 16 अध्याय में बताते हैं, ईश्वरो हम भोगी मैं भगवान हूं, जैसे हिरण्यकश्यप बोलता था, है कोई भगवान है, मैं भगवान हूं, जो भी जैसे अहंकार में आ जाता मैं भगवान हूं बोलेगा, हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, मैं सिद्ध हूं, सब मेरे से बढ़कर बलवान है, ये ऐसा बोलना राक्षस स्वभाव है, भक्त कभी नहीं बोलेगा। जो भक्त किसी भी चाहे हो, कोई भी योनि से आया, राक्षस भी यदि भक्त है तो नहीं बोलेगा। वृत्रासुर को सुना होगा ना, राक्षस था लेकिन उसने शुद्ध भक्त था। पूर्व भागवत में वैष्णव के लिए 4 धर्मार्थ कामोक्ष जो है वृत्रासुर से सुन सकता और कहीं नहीं, उसको मारने के लिए इंद्र जो है वज्राय तो दिखा देते, मारने के लिए उतारते हैं वज्राय, तो उसको वृत्रासुर को मालूम है, ए इंद्र इस काल में तुम मेरे को नहीं मार सकते हो, और जैसे इंद्र जो है वज्राय को उठा दिया, और उसमें किसको देख रहे हैं, भगवान नारायण को देख रहे हैं, संघर्षण भगवान को देख रहा हूं, और देखते हैं भगवान स्तुति कर रहे हैं, हम हरे तव पादय कमूला दासानु दासो भवितास्य भूया मनस्मराता गुणांस्ते गृणीत वा कर्म करो तो काय, ये वैष्णव का धर्म, धर्मार्थ काम मोक्ष होता है ना गृहस्थ के लिए, जो सन्यासी ब्रह्मचारी के लिए सभी चार इकट्ठे होकर भगवत के सेवा करते हैं, उनके सभी एक ही धर्म हो जाता है। परंतु जो गृहस्थ के लिए वैष्णव है, भक्त है, उसका अच्छा धर्मार्थ काम मोक्ष करना चाहिए। और धर्म क्या है, एक ही है उनके लिए, अहम हरे तव पादय कमूला दासानुदासो भवतास्मि भूया। मुझे आप डायरेक्ट सेवा का नहीं भी करने के लिए आप योग नहीं समझते हो, कम से कम आपके दास का, आपके भक्तों का सेवा करने के लिए तो मेरे को वो वरदान प्रदान करो। क्योंकि वो चालाक है, वो भी भक्तों का भक्त बनने से भगवान बड़ा प्रसन्न होते थे। मनस्मारा तो आसपते आसपते हे प्राणनाथ, मैं आपको ऐसा वरदान दो कि मैं हमेशा आपका मन में आपका स्मरण करते रहूं। घृणी तवाक कर्म करो तो कया, पर जीवा से आपका नाम को गुणगान करते रहो और शरीर से काया आपका सेवा करते रहो। कामना क्या है, धर्म अर्थ, क्या इच्छा चाहिए, नाक पृष्ठम न चपा रमेश्यम न सार्वभौम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर ना, अभी मेरे के नहीं चाहिए ना ब्रह्म बनना, ना रसाद बच्चा, ना सार्वभौम बनना चाहिए, पाताल लोक का स्वामी बनना चाहिए। क्या चाहिए, समुंजसत्व विरहं च कांचे। समुंजसत्व करते हैं भगवान समस्त वरदान के प्रदात आज है, आप मेरे को ये वरदान दो कि विरह भाव से अमर को निरंतर आपको कामना करते रहो। एक और एक अर्थ है इच्छा करना, कामना क्या है भक्तों के लिए, इसका बहुत लंबा चौड़ा व्याख्या करना है लेकिन समय देख रहा हूं। तीसरा कामना क्या भक्तों के लिए, वो भी बोलते हैं, अजात पच्छा योमात रूखगा तन्यम यथा वच्चत रोचुधार्था प्रियं प्रियेवा वृषतम वृषण्णो मनोरविंदा चतुरुच्यते त्वाम। अजात पच्छा, जब बच्ची का छोटा छोटा बच्चा हुआ, अभी तो अभी उनको पंख आया नहीं है, और माता पक्षी जब उनके लिए भोजन लाने के लिए उड़कर चला जाती है, हमेशा भयातुर रहती है, हमेशा भय रहता है कौन आएगा हमारे को पकड़ लेगा खा लेगा, हमेशा भय में रहता है छोटा बच्ची, क्योंकि उड़ नहीं सकता, कुछ भी निस्सहाय स्थिति में रहती है। इसलिए जैसे बच्चे को अपना माँ कुछ लेकर आ रहे देख रहे, एकदम चिल्लाने लगता है, पूरा दिन भर आतुर होकर देखते रहता है। अच्छा आत पक्षा युवा माता रो खगा, माता पक्षी खगा, उसके लिए पूरा दिन भर प्रतीक्षा करते, निरंतर माता का स्मरण करते रहते। भगवान बोलता है भैया माता आकर कुछ खाने के लिए देते तो भूल जाएगा। दूसरा उदाहरण देते हैं, संयम यथा वृक्ष तरो चुधारता, जब बच्चा तो घर में छोड़कर माता को चराने के लिए ले जाते हैं, तब तो बच्चा जब माता के लिए देखते रहते हैं कब आएगा मेरे को दूध देगा, भगवान बोलते भाई दूध मिल गया तो वो भी सो जाएगा, ये तो शुद्ध भक्ति नहीं हुआ ना। प्रियम प्रिय विषितम प्रसन्ना, एक प्रिय अपने प्रियतम प्रियतम के लिए जिस प्रकार प्रतीक्षा करते, जैसे उदाहरण के लिए एक अनपढ़ बालिका से शादी हुआ, लड़की शादी हुआ अनपढ़ एकदम, एक दो तीन क्या मालूम नहीं, पति बोला भाई मैं एक छह दिन के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ। अभी छह दिन क्या होता है, अब उसको कैसे समझाए छह दिन क्या होता है, उसको बोला भाई ऐसा करो ये लकीरें मैं छह इधर गिनती कर रहा हूँ, लकीरें गिन दूंगा, रोजाना जब भी उठता है ना एक लकीर को मिटा दो, जिस दिन पूरा मिट जाएगा उसी दिन मैं आ जाऊंगा। हाँ उसने समझ लिया, अच्छी बात है, हर हर दिन यही चिंता, वो मेरा पति कब आएगा निश्चित, पूरा दिन भर चिंता करेगा रात कब होगा सुबह कब होगा, जाकर उठकर निकाले। तो इस प्रकार जिस प्रकार विषितम विषण हमेशा प्रतीक्षा करते हुए हमेशा चिंतन करते रहते, मनोरविंदाचित हे भगवान मेरे को ऐसा वरदान दो कि मेरा मन से निरंतर आपके लिए इस प्रकार जिस प्रकार प्रिय अप्रपेतम के लिए प्रतीक्षा करते अपना मन में चिंतन करते थे, इस प्रकार मैं आपके लिए चिंतन करूं, ये वैष्णव के लिए हा? और हमारा मोक्ष चाहिए, वैष्णव मोक्ष मांगेंगे, विशेषता हमारा इस्कोन में जो गौड़ीय संप्रदाय में भक्त मोक्ष भी नहीं मांगते हैं। चेतन महाप्रभु बोला है मन मन जन्म जन्म ईश्वर भवता भक्ति रहित की चाहिए, उसके लिए हम वैष्णव के लिए क्या वो इच्छा है, मोक्ष के गति क्या है, ममोत्तम श्लोक जनी सुसख्यम संसार चक्रे भवताम सकर्म भी, मेरा किया हुआ कर्म का अनुसार इस संसार में बार बार जन्म लेते रहूं, अपना कर्म के साथ सुख दुख भोगूं, परंतु हर जन्म क्या है ममोत्तम श्लोक जनेशु सख्यम, परंतु हर जन्म में मेरे को किसका साथ होना चाहिए, भक्तों का सांगत्य होने, आपका शुद्ध भक्त है उनका सांगत्य। तो प्रहलाद महाराज भी तो पूछे चार स्वर्ग नहीं मांगते हैं, हर जन्म में कितने भी जन्म में आपके शुद्ध भक्तों का सांगत्य सख्यम होना चाहिए, संगत होना चाहिए। तन्माया आत्मजदारगी गृहेषु सक्ता, हे भगवान आपका माया के कारण जो है पति पत्नी घर गृहस्थी ये सब जो है आपका माया है। ननाथ भूयात, बोलते हैं भगवान ये कभी भी मेरे को ऐसा मेरे को वरदान दो किसी भी जन्म में मेरे को पति पत्नी बच्चों से घर से इसे मोह ना हो जाए, ये वैष्णव का धर्मार्थ काम अच्छा है। जबकि इधर असुर का स्वभाव है कि हमेशा अपना स्वार्थ के लिए दूसरों को कष्ट देता है, परंतु वैष्णव भक्त भगवान का प्रिय होते हैं, उनके क्या पूरा जन कल्याण के लिए अपने लिए कुछ नहीं मांगता, जो कुछ मांगता भगवान का सेवा के लिए।